ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रन्थाश्रीमद्भागवतं स्कन्द 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 36 यश्रेयः वैर्विलोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधा सप्त सप्तर्ध्वं जगनादिभिः यश्च हि अवयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधा सप्त सप्तर्ध्वं जगनादिभिः यश्च हि अवयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधा सप्त सप्तर्ध्वं जगनादिभिः यश्चैः कल्पयन्ति मनीषिणः सप्तर्ध्वं जगनादिभिः यश्चैः वैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधा सप्त सप्तर्ध्वं जगनादिभिः शब्दात् यश जिसका यह इस ब्रह्मांड में अवयवे शरीर के अंगों के द्वारा लोकान सारे लोग कल्पयन्ति कल्पना करते हैं मनीषिणः बड़े बड़े दार्शनिक कटियादिभि कमर से नीचे अधः नीचे की ओर सप्त सात लोक सप्त ऊर्ध्वं तथा सात लोक ऊपर की ओर जगन आदि भी सामने का हिस्सा अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से है बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। तात्पर्य कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है इसका अर्थ है कल्पना करते हैं भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाओं वाले शाश्वत रूप को नहीं मानते यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के स्वरूपों में से एक है किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक है कहा गया है कि सात ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित है और सात अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित है कहने का भाव यह है कि भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत है और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपां सागर जातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में ब्रह्मा जी का जो संवाद है नारद के साथ हो रहा है और ब्रह्मा धीरे धीरे इस सृष्टि के पीछे भगवान कृष्ण किस प्रकार से विद्यमान है या फिर भगवान कृष्ण किस प्रकार से इस सृष्टि के प्रमुख सृजन करता है ये चीज को प्रकट करते जा रहे हैं। तो ब्रह्मा ने पिछले श्लोकों में वर्णन किया था कि किस प्रकार से इस ब्रह्मांड का सृजन होता है और आज आज इस श्लोक में वो ये जो ब्रह्मांड है या जो इस ब्रह्मांड में 14 भुवन है, भुवन का मतलब है 14 लोक है, प्लैनेट्स हैं, ये उसकी तुलना वो भगवान के विश्व रूप से करते हैं। तो इस श्लोक में प्रमुख रूप से वो कहते हैं कि भगवान के शरीर के दो भाग हैं, एक उनके कमर से नीचे और एक कमर से ऊपर। तो कमर के नीचे वाले 7 लोक हैं और कमर से ऊपर भी कितने लोक हैं? 7 लोक हैं। तो 14 लोकों का ये ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के स्वरूप को समझना बहुत ही कठिन है, बल्कि जो बड़े बड़े दार्शनिक लोग हैं, बड़े बड़े जो फिलोसोफर हैं, विद्वान ज्ञानी लोग हैं, वो भी कल्पना ही करते हैं, कल्पना के द्वारा ही वो भगवान का आकलन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में इस सारे वर्णन का भाव यही है कि भगवान कृष्ण जो भी उन्होंने सृष्टि निर्माण की है उस सृष्टि से वो पूर्ण रूपेण अवगत है, मतलब वो जानते हैं हर छोटी छोटी चीज जो इस जगत में है उससे वो अवगत है, उसको जानते हैं, उनके नियंत्रण में है। ऐसे नहीं है कि भगवान का विराट रूप है इस भौतिक पंच महाभूतों से उसकी तुलना की जाती है कई बार, और लेकिन उनका कोई शाश्वत मूल रूप नहीं है, ऐसे नहीं है। भगवान क्या है? शाश्वत उनका मूल रूप है और मूल रूप कौन सा है? द्विभुज श्याम सुंदर रूप में कृष्ण नित्य रूपेण अपने गोलक वृंदावन धाम में सदैव विराजमान है। तो ये चीज को जानने के लिए वास्तव में हम भगवान गीता में कहते बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, कि ये चीज को जानना या इस धरातल तक आने के लिए बहुत जन्म व्यक्ति गुजरता है, बहुत जन्मों में वो जाता है, अभ्यास करता है, और फाइनली यदि वो भाग्यवान है, भाग्यवान कौन है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव? गुरु कृष्ण प्रसाद। भाग्यवान व्यक्ति वो है जो गुरु और कृष्ण के संपर्क में आया है और भगवत भक्ति के प्रोसेस में लग गया है, वो वास्तव में भाग्यवान है। और उसी भाग्यवान व्यक्ति की तुलना भगवान गीता में कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ। क्यों वो महात्मा है? क्योंकि उसने फाइनली ये जान लिया है कि वासुदेव कृष्ण ही हाँ सारे कारणों के कारण है और उनका शाश्वत निजी अपना द्विभुज हाँ सुंदर ऐसा रूप है। तो ये जनरली भौतिकतावादी व्यक्ति को भगवान के रूप को स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए मायावादी भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये जगत में जो वो ब्रह्म है वो ये जगत में शरीर धारण करता है, हमारे जैसा ही शरीर होता है, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर वो धारण करता है, इसलिए वो ये भी विश्वास करना उनके लिए कठिन हो जाता है कि इस जगत से परे भी कोई जीवन है, इस जगत से परे भी हमारा शरीर है। क्यों नहीं वो शरीर को स्वीकार करते? क्योंकि इस जगत में वो शरीर की कष्टमय स्थिति को वो अनुभव कर चुके हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि इसके बाद भी हमारा शरीर है। इसलिए जो बुद्धिस्ट है वो कहते हैं शून्यवाद, इसके परे लाइफ नहीं है। और इसी कारण से मायावादी फॉलोअर जो शंकराचार्य के हैं वो भी कहते हैं ब्रह्म लीन, हम इसके बाद क्या हो जाएंगे? ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तदाकार हो जाएंगे, एकात्म हो जाएगा, फिर हम अपने स्वरूप को खो देंगे। क्योंकि उनको पता है वहां यदि शरीर होगा तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये जगत में शरीर है तो वह कष्टप्रद है, यदि वहां भी शरीर होगा तो वो भी कैसे होगा? कष्टप्रद होगा। उनको इसकी जानकारी नहीं है कि वहां हर एक जीव का अपना निजी रूप है और वहां उसके पास शाश्वत और आनंदमय और ज्ञानमय ऐसा दिव्य शरीर है। तो उसकी जो समझ है इन दार्शनिकों को बहुत कम है, वो केवल कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने दिव्य शरीर में या दिव्य रूप में सदैव अपने आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में आता है, कृष्ण या भगवान में 64 गुण है, 64 क्वालिटीज है। तो उनमें से बाकी गुण विष्णु या बाकी अवतारों में हमें प्राप्त होती हैं, नारायण आदि लेके या राम आदि, परंतु जो कृष्ण है उनमें कितने हैं? 4 गुण विशेष रूप से अधिक हैं। और वो 4 गुण कौन से हैं? भगवान कृष्ण रूप माधुर्य, भगवान को माधुर्य का निलय कृष्ण कहा जाता है कि जिनका दिव्य शरीर या दिव्य मधुरता से बने हुए हैं और जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है वो भी मधुरता का या स्वीटनेस का अनुभव करता है। मधुरता का मतलब क्या है? स्वीटनेस। इसलिए वल्लभाचार्य ने जब भगवान के दिव्य शरीर दिव्यता का वर्णन किया, उनके दिव्य रूप का वर्णन किया, तो उन्होंने एक मधुराष्ट की लिख दिया, उसमें भगवान के हर अंग का वर्णन उन्होंने किससे किया है? मधुर, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, गल सब कुछ मधुर है। उनका हंसना, उनका चलना, उनका बोलना, उनके शरीर के सारे अंग हर कोई मधुर है। इसलिए भगवान को माधुर्य का निलय कृष्ण कहा जाता है कि जो माधुर्य से बने हुए हैं। इसलिए सारे धामों में वृंदावन धाम माधुर्य धाम कहा जाता है। माधुर्य धाम का मतलब ये कि जहां हर चीज मधुर है, स्वीट है, वहां के गोप हैं, गोपियां हैं, बछड़े हैं, गौवे हैं, ग्वालवाल आदि हैं, वहां के पेड़ पौधे हैं, घास है, फल है, जल है, सब कुछ क्या है, मधुर है। इसलिए कृष्ण को भी अपने धाम का मधुरता से वो अपने आप को दूर नहीं रख पाते, इसलिए अपने धाम की मधुरता का आस्वादन करने के लिए कृष्ण क्या बन जाते हैं, बछड़े बन जाते हैं, गव्य बन जाते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण का धाम माधुर्य धाम है और जो चैतन्य महाप्रभु का धाम नवदीप मायापुर वो क्या है, औदार्य धाम है। औदार्य का मतलब है उदारता, मैग्नानिमस, वदान्यता। तो नवदीप मायापुर वही कृष्ण का धाम, जो कृष्ण में क्वालिटी है वही क्वालिटी चैतन्य महाप्रभु में है, जो वृंदावन धाम में गुण है वही सारे गुण कौन से धाम में है, नवदीप मायापुर में है। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा है नवदीप मायापुर में और चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण से अधिक है, और वो क्या है कि कृष्ण में माधुर्य है, वही माधुर्य जब ओवरफ्लो हो जाता है, आप किसी ग्लास में जूस डालते हो और वो जूस बाहर निकल के गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, औदार्य। माधुर्य जब टपकने लगता है, हर एक व्यक्ति को वो सरलता से प्राप्त होने लगता है, और उसी माधुर्य में जब उदारता बहुत अधिक मात्रा में शामिल हो जाती है, दया की भावना, कंपैशन, तो वह औदार्य में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कृष्ण से भी श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है, बहुत अधिक दयालु है। इसलिए तोमा बिना के दयालु जगत संसार है। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि आपके बिना आपसे अधिक कौन हो सकता है, दया दयालु अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के समान कोई भी नहीं है। बल्कि कृष्ण तो हर समय जब भी बात करते हैं तो कानून से बात करते हैं, लॉज, नियमों का बात करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज, छोड़ो तभी मेरे पास आओ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सत्यैव भजाहम, जितना मेरा भजन करोगे उतना ही मैं आपका भजन करूंगा। तो कृष्ण हर समय नियमों से बांधते हैं, कानून की बात करते हैं और दायरा बनाए रखते हैं, वो अपने आप आगे नहीं बढ़ते। लेकिन वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो इतने उदार हो जाते हैं, वो कोई बिजनेस डील नहीं रखते। एक प्रकार से हम देखें एक ओर से कृष्ण हमेशा बिजनेस डील, आप इतना मेरा भजन करोगे उतना मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है, मार खाए प्रेम दे दयालु तो नहीं है। मार खाए, जो मार खाते हैं, लेकिन मार खाने वाले को क्या देते हैं, कृष्ण प्रेम देते हैं, कृष्ण ऐसा नहीं करते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक उदार है, कृष्ण से भी बहुत अधिक औदार्य उदारता उनमें भरी है। इसलिए जब बनारस में रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए आए थे, रूप गोस्वामी अपने भाई वल्लभ अनुपम जिनका दूसरा नाम है उनके साथ सब चीजों को त्याग करके निकले थे, क्योंकि रूप सनातन, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु से बहुत अधिक आसक्त हो गए थे, आसक्त थे। बल्कि रूप गोस्वामी के जीवन में जब शुरुआत के दिनों में वो अपने गृहस्थ जीवन में थे, रूप गोस्वामी नित्यानंद दास वर्णन करते हैं उनके चरित्र का, तो वो कहते हैं कि रूप गोस्वामी जब वित्त मंत्री थे नवाब हुसैन के यहाँ, तो एक दिन क्योंकि उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, मंडलपति, मंडलपति। आजकल तो ये जनरल नाम यूज करते हैं लोग, महामंडलेश्वर, लेकिन असली महामंडलेश्वर कौन थे, ये छह गोस्वामी थे जिनके पास भौतिक ऐश्वर्य भरा हुआ था। तो ऐसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अपने व्यवसायिक जीवन में या राजा के यहाँ नौकरी करने के बावजूद भी उनका मन उस कार्य में क्षण मात्र भी नहीं लग रहा था। लेकिन उनका हृदय उनका मन पूर्ण रूपेण श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में था और वो केवल यही सोच रहे थे कि कब वो समय आएगा, वो मौका आएगा, मैं इस चीज को त्याग कर छोड़कर चैतन्य महाप्रभु की 100% शरणागति स्वीकार करूंगा और अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगाऊंगा। इसलिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु को वो राम अकेले में रहते थे लेटर लिखा करते थे, लेटर लिखते थे और सची माता कभी कभी उस लेटर्स को पढ़ती थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो निमाय पंडित के रूप में थे वो उनको पढ़ते थे और उनको उन्होंने एक श्लोक में उनको उपदेश दिया, कहा कि जिस प्रकार से एक स्त्री अपने पति के साथ रहती है लेकिन घर का कामकाज इतनी सुव्यवस्थित रूप से करती है लेकिन कार्य करते हुए सदैव अपने प्रेमी का स्मरण करती है, उसी प्रकार से आप नवाब हुसैन के यहां नौकरी करने के बावजूद भी उस प्रकार की स्त्री के जैसे आचरण करो। कार्य करते हुए भी क्या करो, आपका हृदय आपका मन आपका चित्त पूर्ण रूपेण कृष्ण के लिए कृष्ण के स्मरण आदि के लिए होना चाहिए। और इसी को भगवान ने भगवद गीता में कहा है, मया अनुस्मर युद्ध, युद्ध करो लेकिन कैसे, मेरा स्मरण करते हुए। तो रूप गोस्वामी हर समय ईगर थे कब हमें जाने का मौका मिलेगा, कब इससे छूटेंगे, क्योंकि जब कृष्ण देखते हैं किसी भक्त में बहुत ईगरनेस है उत्कंठा है तो कृष्ण ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो जो भक्त है पूर्ण रूपेण उनकी सेवा में उसको लगा देते हैं। तो रूप सनातन की बहुत अधिक लालसा थी, उनका ऑफिस आदि में उनका मन नहीं लगता था, जैसे ही निकलते थे राज दरबार से वैसे ही भक्तों के संग में वैष्णवों के संग में जाते थे। उन्होंने अपने घर में महल में एक बड़ा सा हॉल ही बनाया था, रोज सुबह शाम बहुत सारे वैष्णव आते थे और सदैव श्रीमद् भागवतम का चर्चा करते थे और हरि नाम का उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे रूप गोस्वामी सदैव अपने भाई सनातन गोस्वामी के संग में श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करते थे दिन रात। तो ऐसे रूप गोस्वामी एक दिन जब रात को सो रहे थे और उनके राज वस्त्र हुआ करते थे ना, राजा के वहां जॉब कर रहे हैं तो बहुत महंगे महंगे कोट और राज वस्त्र वो धारण करते थे। तो एक रात को जब वो सो गए तो अंधेरा था और उनको किसी कीड़े ने काट लिया, पता नहीं कीड़े ने काटा जोर से कुछ। तो उस समय उनकी पत्नी, क्योंकि अंधेरा था वो कोई टॉर्च आदि तो नहीं थी कि लाइट बल्ब ऑन करे तो प्रकाश हो जाए, रूप गोस्वामी की पत्नी ने क्या किया, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया, उनका जो मूल्यवान कपड़े का कुछ भाग था उसको जलाया, अंधेरे में उनको भी दिखा नहीं और जला के उन्होंने क्या किया, प्रकाश फैलाया। और रूप गोस्वामी को पता चला कि अरे यहाँ तो कोई कीड़ा है या कुछ है, तो वो डांटने लगे, उन्होंने कहा तुमने मेरे मूल्यवान कपड़े को जलाया है इसको देखने के लिए। तो पत्नी कहती है स्वामी की सेवा के लिए कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है, जब स्वामी की सेवा करने का वक्त आता है समय आता है। रूप गोस्वामी अपने पत्नी के वचनों से बिल्कुल प्रभावित हो गए, उनको लगा कि वास्तव में कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु की सेवा के आगे कोई भी कार्य मूल्यवान नहीं है, उस चीज के लिए किसी भी वस्तु का त्याग या सैक्रिफाइस करने के लिए व्यक्ति को तैयार हो जाना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे वो वैराग्य का वृद्धि होता है और फाइनली जब रूप गोस्वामी को पता चलता है, सनातन गोस्वामी को पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो निमाय पंडित है उन्होंने क्या किया है, संन्यास ग्रहण किया है केशव भारती के द्वारा और संन्यास ग्रहण करके वो जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं और जगन्नाथपुरी से वो अभी वृंदावन जा रहे हैं। ये दोनों भाई सदैव किसी ना किसी व्यक्ति को भेजते थे नवदीप या जगन्नाथपुरी और पता करते थे कि अभी क्या चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु की कार्यकलापों का क्या हो रहा है, हम वो सुनने के लिए लालायित रहते थे सदैव। तब जब रूप गोस्वामी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, तो रूप गोस्वामी ने सबसे पहले राजा की अनुमति ली और अपना राज पाठ का जो कारभार है, जिम्मेदारी है, उसको त्याग दिया, रिटायरमेंट, स्वयं रिटायरमेंट ले ली। और रिटायरमेंट में उनको बहुत सारा धन मिला, नाव भर भर के सोने के मोहरे क्या कहते हैं, कॉइन्स, मोहरे मिले। और रूप गोस्वामी ने उनको क्या किया, बांटा, आधा भाग वैष्णव आदि की सेवा में लगाया ब्राह्मणों के, और कुछ परिवार के लिए दे दिया 25%, 25% आगे के लिए रखा सनातन गोस्वामी के लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रूप गोस्वामी है वो किस प्रकार से भगवत सेवा के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा जो धाम है वृंदावन धाम, माधुर्य से परिपूर्ण है, और जो नवदीप धाम है वह औदार्य से परिपूर्ण है। तो कृष्ण का अपना निजी स्वयं का रूप है, स्वरूप है, जिसका वर्णन शास्त्रों में हमें प्राप्त होता है। तो भगवान के चार जो प्रमुख एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, उनमें से क्या है, एक रूप माधुर्य। रूप माधुर्य के द्वारा कृष्ण हर एक को अपनी ओर आकृष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। इतना अधिक कृष्ण सौंदर्यमान है। गोपिया कहती है, अतृप्त है या करे विधि रनंदान, अविदिग्ध विधि भाल ना जाने सृजान। तो गोपिया जब कृष्ण के सौंदर्य को देखती है तो वह तृप्त नहीं होती, जिस प्रकार से भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि वयम न वितृप्यामा साधु साधु पदे पदे, कि हम आपके द्वारा, हे सुत गोस्वामी, आपके द्वारा सुनते जा रहे हैं लेकिन हम अभी तृप्त नहीं हो रहे हैं। साधु साधु पदे पदे जितना अधिक, जितने क्षणों तक हम सुनते जा रहे हैं, उतना अधिक हमारा जो आकर्षण है श्रवण करने के लिए बढ़ रहा है कृष्ण का गुणगान। तो जो गोपियां हैं वो भी कृष्ण को देखकर कभी तृप्ति अनुभव नहीं करती थी, बल्कि वो सोचती थी कि हमारे जो ये पलके हैं, ये पलके कृष्ण को देखने में बाधा है, हमारे साथ बिल्कुल उल्टा है, हमें तो अच्छा लगता है पलके बार बार झपके, क्योंकि उसमें हम दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, चाहे हम जपा करते समय या क्लास सुनते समय, कभी कभी पढ़ते समय, तो लेकिन गोपियों का आकर्षण इतना स्ट्रांग है, वो अतृप्त हया करे विधि न निंदन। विधि, विधि ब्रह्मा का एक नाम है, विधि जो सृजन करता है, उनकी भी निंदा करते हैं। अविदग्ध विधि भाल ना जाने सृजन, ये जो ब्रह्मा है जिसने ये सृष्टि की है, क्योंकि भगवान ने तो पंच महाभूत आदि दे दिए, लेकिन ये ब्रह्मा इंजीनियर है, उन्होंने ये बॉडी का डिजाइन कैसे होना चाहिए, सारी चीजें कैसे होनी चाहिए, ये किसने निर्माण किया है, ब्रह्मा ने। रॉ मटेरियल भगवान ने प्रदान किया है, लेकिन बुद्धि भगवान ने दी है, जिसके अनुसार उन्होंने पूरे इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है, जो सेकंड क्रिएटर्स कहा जाता है। तो गोपियां ऐसे ब्रह्मा के क्रिएशन में गलती ढूंढ रही है। क्यों गलती ढूंढ रही है, क्योंकि वो जो उसने ये आंखें बनाई हैं, गोपियां ने भगवान की निंदा नहीं की कि भगवान क्रिएटर है, उन्होंने, उनको पता है सेकंड क्रिएटर कौन है, ब्रह्मा है, जिन्होंने ये शरीर का निर्माण किया है और इसमें उन्होंने आंखें बनाई हैं। कोटि नेत्र नाही दिल सबे दिल द्वये, तहां देने मिश कृष्ण के देखे बहुए। इस ब्रह्मा ने गलती की है, आपस में चर्चा कर रही है, इसका इसको कहते हैं कथयन्तस्य माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तगण आपस में मिलते हैं तो भगवत भक्ति के अनुभवों को शेयर करते हैं। तो गोपियों के जब मिलते थे तो उनका एक ही विषय होता था, चर्चा का विषय क्या है, कृष्ण और कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण की सेवा आदि का निरंतर वो चर्चा करती थी। तो गोपियां जब मिली तो उन्होंने कहा कोटि नेत्र नाहि दिला सबे दिला दुई। ये ब्रह्मा ने सबको दो ही आंखें दी हैं, कहते करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, बल्कि इनको कितनी आंखें हैं, इंद्र को सहस्राक्ष, सहस्र आंखें उनके पूरे शरीर में आंखें लगी हुई है इंद्र के। तो गोपियां कहती है कि इस मूर्ख ब्रह्मा ने केवल दो आंखें हमें प्रदान की है, करोड़ों करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, क्योंकि वो कृष्ण के सौंदर्य को देखकर कभी तृप्ति अनुभव नहीं कर रही है और उसको देखना चाह रही है, उसका पान करना चाह रही है। अबे हम अपनी दो आंखों से कितने परेशान है कि नहीं परेशान। हाँ, ये दो आंखें कितने पावरफुल है, जो सदैव भौतिक विषयों की ओर तीव्रता से भाग रही है, लेकिन गोपियों के साथ ऐसा नहीं है। वो कहती है अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़वदीक्षताम पक्ष मकृदृशाम। तो इस प्रकार से वो कहती है, ब्रह्मा को वो दोष देती है, क्योंकि भगवान कृष्ण का सौंदर्य कैसे है, कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषा तमहं भजामि। स्वयं ब्रह्मा जी के शब्द है, कहते कि कृष्ण के सौंदर्य इतना अधिक कमनीय है, आकृष्ट करने वाला है कि कंदर्प कोटि, कितने कंदर्प इकट्ठा हो जाए, कामदेव करोड़ों करोड़ों कामदेवों को इकट्ठा करके उनका जूस निकाला जाए, उससे भी अधिक कृष्ण सौंदर्यमान है। कामदेव से सारा जगत आकृष्ट होता है, कामदेव सारे जगत को मोहित करते हैं, सिंगल कामदेव, लेकिन ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेवों को एकत्रित किया जाए, उनसे भी अधिक कृष्ण का सौंदर्य है। लेकिन हम ये जगत के लिक्विड ब्यूटी से आकृष्ट हैं, है ना, प्रभुपाद लिक्विड ब्यूटी का स्टोरी सुनाते हैं। तो कृष्ण का विशेषता क्या है सौंदर्य का, पुरुष योषित के बास्तावर जंगा सर्वचित्ताकर्षक साक्षात मन्मथ मदान। शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण ऐसे नहीं कि गोपियों को आकर्षित करने में एक्सपर्ट है, पुरुष योषित कि वह स्थावर जंगम, चाहे वह स्त्री हो वृंदावन के पुरुष हो, चाहे स्थावर वस्तु हो या जंगम चर आचर क्यों ना हो, कृष्ण में इतना सामर्थ्य है कि सर्वचित्ताकर्षक साक्षात मन मथ मदन, मन को मथित करने वाले, मंथन करने वाले मदन कृष्ण हैं, सबको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, हर एक जीव को, ये उनके लिए स्वाभाविक है। वृंदावन में चाहे गव्य है, पुरुष है, स्त्रिया है, पक्षी आदि है, वृक्ष आदि है, लताएं हैं, सब कृष्ण की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम में गए थे दक्षिण भारत की यात्रा में, तो वह श्रीरंगम में वो वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट के जो पिता हैं, उनके घर में रुके थे। तो वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब रंगनाथ में गए, चैतन्य महाप्रभु किसी और स्थान में ज्यादा रुके नहीं, एक तो चैतन्य महाप्रभु अपने पूरे जीवन काल में नवदीप में ज्यादा रुके, फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी में, वृंदावन, और तीसरी कोई चीज थी या चौथी, वो था श्रीरंगम, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने 4 महीने निवास किया चातुर्मास में। और वहां आज भी श्रीरंगम की जो स्त्रियां हैं, मतलब आपका घड़ी ठीक चलता है कि नहीं चलता है ये देखने के लिए आपको वहां की कई ऐसे भक्त हैं, स्त्रियां हैं, जो ऑन टाइम, चाहे बारिश, ठंडी, गर्मी, सर्दी, अंधेरा, दिन, कुछ भी हो, उनका जो टाइम फिक्स है कृष्ण का, श्री रंगनाथ का दर्शन करने का, वो बिल्कुल पक्का है। तो चैतन्य महाप्रभु जब सुबह सुबह श्रीरंगम में गए तो ये सारी स्त्रियां और बहुत सारे लोग रंगनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जैसे श्रीरंगम में रंगनाथ के मंदिर के सामने प्रवेश किया, नाचते हुए उनके साथ उनके सेवक थे कृष्णदास, और तो सारे लोग रंगनाथ को भूल गए उस समय के लिए, रंगनाथ के दर्शन को, और चैतन्य महाप्रभु की ओर आकृष्ट हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने रंगनाथ का दर्शन किया, वहां के जो हेड प्रिस्ट है पुजारी थे वेंकट भट्ट, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को निवेदन किया कि आप आइए और हमारे घर में चातुर्मास शुरू ही हो रहा है तो आप हमारे घर में आमंत्रण स्वीकार कीजिए और निवास कीजिए। चैतन्य महाप्रभु उनके घर में निवास करते हैं। तो महाप्रभु ने देखा कि ये जो वेंकट भट्ट है ये लक्ष्मी नारायण के उपासक है, लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि के लक्ष्मी के भक्त है। रंगनाथ तो हमेशा उनकी पत्नी रंगवल्ली, लक्ष्मी का दूसरा नाम क्या है, रंगवल्ली, रंगनाथ रंगवल्ली, तो उनके साथ निवास करते हैं। तायार कहते वहां उनको रंगनाथ में। तो उनके साथ जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारी जो लक्ष्मी है ना वो हमारे कृष्ण से आकृष्ट रहती है हमेशा, मतलब वो भी पतिव्रता नहीं है, वो नारायण की पत्नी है, विष्णु की सहचरी है, सदैव उनके चरणों की सेवा में लगी रहती है, लेकिन कभी कभी हमारे जो श्याम सुंदर कृष्ण है ब्रज के उनका स्मरण करते हुए ये इच्छा प्रकट करती है कि कब वो समय आएगा मैं श्याम सुंदर कृष्ण कि जो दिव्य वृंदावन की रास लीला है उनमें भाग लूंगी, कब उनका मुझे संग लाभ होगा। तो ये थोड़े कंफ्यूज हो गए, ये क्या है, ये तो पहली बार उन्होंने सोचा होगा वेंकट भट्ट ने। तो चैतन्य महाप्रभु तो अनार्पित चरण चिरा अवतीर्ण करो कि आज तक किसी अवतार ने जो वस्तु अर्पित नहीं की, जो प्रदान नहीं कि सारे जीवों को, वो वस्तु देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा अनर्पित चरित चिराग करुणयावतीर्ण कलो, करुणा के सागर कलयुग में अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु। उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रीयाम, जो उन्मत उन्नत उज्ज्वल रस है माधुर्य के भावना में कृष्ण की सेवा की जो स्थिति है वो सबको देने के लिए वो अवतरित हुए। तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कहा लक्ष्मीकांत आदि अवतारे हरे मान, लक्ष्मी आदि नारी गणेर करे आकर्षण। उन्होंने कहा हमारे जो कृष्ण है वो आपके जो लक्ष्मी है उनको भी आकर्षित करते हैं, उनको भी आकर्षित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आमर ठाकुर कृष्ण गोप गोचर साध्वी हया केने चाहे तहार संगम, कहते हमारे ठाकुर तो गवे चराते हैं, कृष्ण गोप गोप है गवे चराने वाले हैं, और यदि वो जो लक्ष्मी कांता है प्रभु कहे भट्ट तुम्हार लक्ष्मी ठाकुरानी, प्रभु कहते कि अरे भट्ट तुम्हारी ठाकुरानी कौन है, लक्ष्मी देवी है, कांत वक्ष सीता पति व्रता श्रवणी, सदैव अपने इसमें निवास करती है, अपने पति की कहां निवास करती है, वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह के रूप में सदैव लक्ष्मी भगवान के वक्ष स्थल में निवास करती है। कहती वो पतिव्रता शिरोमणि होकर भी साध्वी होने के बावजूद भी हमारे कृष्ण से मिलना चाहती है। यही लागी भोग छाड़ी चिरकार व्रत नियम करी तप करी ल अपार, इसलिए वृंदावन में मुझे याद है भांडिर वन में शायद जो लक्ष्मी है वहां आकर तपस्या कर रही है, किस लिए, कृष्ण का संग लाभ करने के लिए, क्योंकि नारायण में वो चार गुण नहीं है, विष्णु में वो चार गुण नहीं है जो प्रमुख किस में है, कृष्ण है, रूप माधुर्य नहीं है, वेणु माधुर्य नहीं है, लीला माधुर्य नहीं है, प्रीति या प्रेम माधुर्य नहीं है, ये चार चीजें नहीं है। अभी चार कितना और लगेगा ना कि चतुर्भुज नारायण वेणु आप बजा रहे हैं, वो तो श्याम सुंदर कृष्ण को ही शोभा देता है, दो भुजाओं में वो वेणु को पकड़ते हैं और उसका वादन करते हैं। तो भगवान कृष्ण में ये चार गुण सर्वाधिक है, इसलिए वो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनमें क्या है, रूप की मधुरता है, सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य जो भगवान के अवतार भी उनके सौंदर्य को देखने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए जो महाविष्णु थे, विष्णु क्या करते हैं द्वारका में, कृष्ण का और अर्जुन का दर्शन करने के लिए, विशेष रूप से कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका में जो ब्राह्मण थे उनके बालकों की चोरी करते हैं। क्यों? कृष्ण को देखना चाहते हैं। उसी प्रकार से ये जो लक्ष्मी देवी है भगवान के रूप माधुर्य के प्रति आकृष्ट होकर क्या करना चाहती है, उनका संग लाभ करना चाहती है। अतएव लक्ष्मीर कृत्य तृष्णा अनुक्षण, कृष्णे तृष्णा अनुक्षण, इसलिए लक्ष्मी का कृष्ण के प्रति तृष्णा है, इसलिए वो सदैव वहां तपस्या में लगी हुई है वृंदावन में, उसको अभी भी एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उनको क्या कहा गया है, आपको यदि वास्तव में कृष्ण का संग लाभ करना है तो आपको ब्रज गोपियों की तरह गोबर के कंडे बनाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे सर्विसेज करनी पड़ेगी। अभी वो महारानी है, लक्ष्मी देवी है, उनको तो ये आदत नहीं है, सिंपल लाइफ, सरलता कठिन है, इसलिए अभी तक लक्ष्मी देवी कृष्ण का संग लाभ नहीं कर रही है, प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो लेकिन गोपियों को जो कृष्ण के माधुर्य से, सौंदर्य से इतने आकृष्ट है कि वो भगवान के बाकी अवतारों के प्रति रंच मात्र भी उनका आकर्षण नहीं है। कृष्ण ने एक बार जब वृंदावन लीला में, कृष्ण बुक में वर्णन आता है, श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जब रास क्रीड़ा हुई थी, भगवान ने वंशीवट में अपने वेणु का वादन किया, तो सारी गोपिकाएं सब चीजों को छोड़कर कृष्ण के पास आती हैं और कृष्ण उनको लेक्चर आदि देते हैं, और बाद में जब रास नृत्य में कृष्ण उस रास स्थली को छोड़कर चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, क्योंकि श्रीमती राधिका चली गई थी, और फिर कृष्ण भी चले जाते हैं, और फिर गोपिकाएं भ्रमण करती हैं, कृष्ण को ढूंढने लगती हैं अलग अलग वृक्षों से। वो जब हिरण को देखती है, कहती है कि आपने श्याम सुंदर कृष्ण को तो नहीं देखा, जिन्होंने कस्तूरी मृग जैसा सुगंध धारण किया हुआ है। तो ऐसे पागल के भांति पूरी रात गोपिकाएं वृक्षों से पूछ रही है, तुलसी से पूछ रही है, हिरणों से पूछ रही है, फूलों से पूछ रही है, कहाँ है कृष्ण। तो ऐसे करते करते वो एक स्थान में आती हैं, वहां वो क्या देखती है कि भगवान ने देखा ये मुझे सर्च कर रही है। तो कृष्ण एक कुंज में, कुंज जो गार्डन होता है लताओं से भरा हुआ, उसके अंदर बैठे थे, देखा कि गोपिकाएं आ रही है। अब ये द्विभुज कृष्ण थे, ये क्या बने, चतुर्भुज बन के वहां बैठे हुए थे। गोपिकाएं आई, अरे या तो नारायण है, उन्होंने कहा नमो नारायण, आप बताइए आपने हमें हमारे जो श्याम सुंदर कृष्ण है उनको देखा है। तो वो जो कृष्ण थे चतुर्भुज रूप में वो मना करते हैं, और वो उनको बस आदर करके प्रणाम करके निकल जाते हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। इसको कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि, एक फिक्स, वो और कुछ नहीं जानते। जैसे अर्जुन उस पंछी की आंख को ही देखे थे, उसी प्रकार से गोपिकाओं का मान हृदय चित्त आदि केवल श्याम सुंदर जो द्विभुज कृष्ण हैं, दो भुजाओं वाले हैं, उनके प्रति ही आकर्षित हैं। चतुर्भुज मूर्ति देखा है गोपिका ने रागे, सही कृष्ण गोपिका रन है अनुरागे। श्री कृष्ण वही कृष्ण चतुर्भुज बने लेकिन गोपिकाओं को इंटरेस्ट ही नहीं है उनमें, इंटरेस्ट खत्म, उनमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड है केवल एक ही व्यक्ति से, किनमें? कृष्ण से, जो वृंदावन के हैं। इसलिए इतना ही नहीं, लक्ष्मी आकृष्ट नहीं होती है, सीता देवी जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया है, और सीता महारानी भी पक्की पतिव्रता है, एक पति व्रत जिनका है, वो भी भगवान कृष्ण को देखकर आकृष्ट हो जाती है। जब भगवान कृष्ण ने भगवान राम वनवास में आए थे चित्रकूट में, तो सीता देवी उनके साथ बैठी थी एक गुफा में, जब वो बैठे थे तो भगवान कृष्ण भगवान राम ने बाहर देखा और देखकर वो हंसने लगे। तो सीता देवी ने कहा, ओ आप क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने कहा, देखो, इन्होंने देखा वहां तो गब्बे चल रही है, कुछ ग्वाल बाल जा रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा, आगे ना मैं अपने मूल रूप में प्रकट होने वाला और यही कार्य करने वाला हूँ, यही लीलाएं करने वाला हूँ, गौवों को चराना, ग्वाल बालों का संग लाभ करना, उनके जैसे गोचारण चारागाह में भ्रमण करना। तो जब ये कहा, सीता देवी ने कहा, आपका कैसा रूप होगा? तो भगवान ने कहा, अभी दिखाता हूं आपको। तो उन्होंने एक शिला ली भगवान राम ने, और आपने जो द्वापर युग में प्रकट होने वाले उस रूप को रेखांकित किया, वह कार्य किया एक पत्थर पर, शिला पर, और जिसमें भगवान ने अपना रूप ही वेणु वादन करते हुए प्रकट कराया। सात साल नीचे गव्वे भी है, ललिता विशाखा सखिया आदि है, ये सब। तो सीता देवी उनके शाम सुंदर रूप का देखकर इतनी आकर्षित हो गई, उन्होंने कहा, ये विग्रह अभी मेरे साथ ही रहेंगे वनवास में, इनको मैं छोड़ नहीं सकती। तो फिर वहां उस विग्रह की स्थापना हुई, बाद में चित्रकूट में वो विग्रह रहे। और आगे चलकर ओडिशा के राजा थे, राजा चोड़ गंगा देव, जिन्होंने कोणार्क मंदिर बनाया। तो वो अपने मंदिर के ओपनिंग के लिए, उद्घाटन के लिए बड़े बड़े राजाओं को पर्सनली निवेदन करने गए थे। तो आए होंगे यूपी बिहार इस तरफ, क्योंकि वो तो नजदीक है। तो राजा ने जब चित्रकूट के आए तो उन्होंने देखा, ये तो अमेजिंग डिजीज है, ये विग्रह उनको पता चला भगवान राम के द्वारा बनाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरे राज्य में होने चाहिए। सारे जो ओडिशा के राजागण है वो राजर्षि थे, उन सबका अनुराग कृष्ण या जगन्नाथ के लिए स्वाभाविक रूप से था। तो वो जो राजा है उस विग्रह को लेकर हाथी के ऊपर बिठा कर लेकर वो अपने ओडिशा ले गए। और ओडिशा शुरू होने से पहले बालेश्वर आता है, वहां जब पहुंचे तो वहां एक स्थान था, रमणीय स्थान, जहां बहुत सारे जलाशय थे, सरोवर थे, पेड़ पौधे हैं, और बहुत सौंदर्यमान वो स्थान था। तो जो रमणीय था इसलिए उस स्थान का नाम रेमुना पड़ा। तो ये गोपीनाथ थे। तो फिर भगवान ने कहा कि मैं इसी स्थान में रहना चाहता हूं, तो भगवान वहां स्थान में रहने लगे। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, रेमुनाते गोपीनाथ परम मोहन। गोपीनाथ जो रेमुना में है वो कैसे हैं? परम मोहन, मोहन ही नहीं है बल्कि सबको मोहित करने वाले हैं। तो इस प्रकार से इवन अपने रूप के प्रति, कृष्ण के रूप के प्रति सीता देवी भी पूर्ण रूप से आकृष्ट हो जाती हैं। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण के अंदर ये जो गुण है, रूप माधुर्य, इसकी तुलना नहीं की जाती, की जा सकती, जो सर्वत्र कृष्ण है। और आगे चलकर वही गोपीनाथ का नाम क्या पड़ा? खीर छोड़ा गोपीनाथ। हाँ, किनके द्वारा? श्रीपद माधवेंद्र पुरी के द्वारा। तो कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं अपने सौंदर्य के द्वारा, इतना अधिक सुंदर है कि वो अपने सौंदर्य से खुद आकर्षित हो जाते हैं। आपना माधुर्य हरे आपना मन, उनका ही सौंदर्य उनके मन को आकर्षित करता है। आपना आपन ही चाहे करते आलिंगन, आपन खुद ही अपना आलिंगन करना चाहते हैं। कृष्ण ललित माधव में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि द्वारका में अपने महल से निकल रहे थे तो वहां तो स्फटिक मणि के खंभे बने हुए हैं जिनमें भगवान को अपना रूप जैसे देखा खंभे में, तो वो चिल्लाए कौन चमत्कार का पुरुष है? अरे कौन सा चमत्कार पुरुष है, आज तक मैंने कभी इसको देखा नहीं। तो भगवान चिल्लाने लगे कौन चमत्कार का पुरुष है, क्या चमत्कार व्यक्ति है, इतना भी कोई सुंदर हो सकता है? तो कृष्ण देखा, मैं उसका आलिंगन करना चाहता हूँ। आलिंगन करते कहा तो वो तो उनको क्या था, खंभा था, खुद का ही रूप दिखाई दे रहा था, द्वारका में ही आकृष्ट नहीं हुए थे। आचार्य अगर कहते कि कृष्ण जब अपने गोप सखाओं के साथ सुबह सुबह गोचारण करने के लिए जाते थे और जब चलते चलते गाय के खुर में जब पानी होता था, चलते चलते नीचे देख लेते थे तो अपना ही सौंदर्य को देखकर उससे आकृष्ट हो जाते थे, ये कौन सा बालक है, ऐसा सोचते थे कृष्ण। इस प्रकार से भगवान बहुत अधिक सौंदर्यमान है, माधुर्य के विग्रह हैं, इतने अधिक मधुर हैं कि हर कोई उनसे आकृष्ट हो जाता है। इसलिए कृष्ण का मतलब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कर्षति इति कृष्ण, जो सबको क्या करते हैं, आकृष्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए वो कृष्ण कहा जाता है। प्रभुपाद ने कहा भगवान का डेफिनेशन ही है जो ऑल अट्रैक्टिव हो, सर्वाधिक आकर्षण, सर्वाकर्षण भगवान, तभी वास्तव में वो भगवान कहलाए जा सकते हैं। ये नहीं कि किसी को आकर्षित कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा, हर एक को, हर जीव को, क्योंकि भगवान कहते हैं ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो हमारा भी स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण है, लेकिन कैसे, या भी वो स्थिति ढकी हुई स्थिति है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा साध्य कबुनय श्रवनादि शुद्ध चित्ते करयोनय, है वो आकर्षण। हम भी भगवान कृष्ण से उतने ही आकर्षित होते हैं, उतना ही आकर्षण का भाव है जितना गोपियों में है, लेकिन अभी वो पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो गया है, उसका विकृत रूप, उसका विकृत रूप क्या है, प्रेम का काम। तो काम में हम जितना अभी आकर्षित है, आकृष्ट है, उतनी ही मात्रा में, उल्टी मात्रा में हम कृष्ण से वास्तव में आकर्षित है, लेकिन वही आकर्षण अभी क्या, काम का रूप धारण किया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्य सिद्ध यह है आकर्षण स्वभाविक, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, श्रवण आदि कार्यों को करने से हम क्या हो जाते हैं, उसको उदित कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इतना अच्छा हमें प्रोग्राम दिया है, इतने अच्छे कार्यकलाप दिए हैं, इतने सारे सेवास की अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि जिनको, चाहे हमारे अंदर कोई भी टेंडेंसी क्यों ना हो, कोई भी योग्यता क्यों ना हो, उसको हम यदि कृष्ण के संबंध में नियुक्त करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो ढका हुई कृष्ण चेतना है वो जागृत हो सकती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार से चुंबक होता है उसके प्रति लोहा, चुंबक आपस में अपने आप आकृष्ट होते हैं, लेकिन लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो वो चुंबक से आकृष्ट नहीं होगा। तो हमारे ऊपर जंग लग गया है, जंग चढ़ा हुआ है, तो उसको कैसे सफाया किया जाए, चेतो दर्पण मार्जनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे तो हम इस भौतिक जगत के प्रति जो आकर्षण है वो खो देंगे, भौतिक जगत के सारे संबंधों को अपने आप त्याग देंगे। जनरली लोग कहते हैं कि कृष्ण भावना ग्रहण करने से लोग हमें छोड़ते हैं, नहीं, हम उनको पीछे छोड़ के आगे जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो हमसे छूट गए हैं, नहीं, हम क्या हो गए हैं, उनकी चेतना से इतना ऊंचे आए हैं कि वो मैच ही नहीं कर पाते हमसे। उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, वास्तव हम इतने आगे हो गए कि वो पीछे ही पीछे रह गए हैं। ये वास्तविक अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा, स्मेरा भंगी त्रयी परिचिताम साच विस्तीर्ण दृष्टि वंश नस्ताधर किशलम उज्ज्वलाम चंद्र के न गोविंदाख्याम हरितनुमित केश तीर्थोपकंठे मा प्रेक्षिस्ता स्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगः। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि हे व्यक्ति, यदि आपको अपने मित्र बंधु बांधव प्रियजनों से यदि बहुत अधिक प्रगाढ़ आसक्ति है, लगाव है, स्नेह है, तो आप क्या करो, जो साच विस्तीर्ण दृष्टि, जिनकी आंखें बिल्कुल विस्तारित है, कमल नयन कृष्ण है, जिन्होंने वंशी बंसी को अपने आधरों के ऊपर धारण किया हुआ है, ऐसे कौन है? गोविंद देव है। रूप गोस्वामी कहते गोविंदाख्या हरि तनुमिताम केश तीर्थोपकंठे, मुखड़े हुए हैं केश तीर्थ केश गाट में, इस मुद्रा में त्रिभंग ललित मुद्रा में नील मेघ के समान उनका वर्ण है, बंसी को उन्होंने अपने आधरों पर धारण किया है, मोर पंख उनके टर्बन या पगड़ी पर लगा हुआ है, ऐसे कृष्ण को आप क्या करो, देखो मां दीदी देखोगे उनका सौंदर्य इतना आकर्षित करने वाला है कि आपका फिर ये जगत से प्रीति खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते कि नहीं चाहते बहुत ही इनसे प्रीति खत्म करना नहीं चाहते, अभी भी हम दो नाव में पाव रख के चलना चाहते, हमें भी विश्वास नहीं है। विश्वास से कृष्ण मिले तरके बहुत दूर, तो फेक विश्वास सही में कृष्ण को देखूंगा तो आसक्ति खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए, रोज कृष्ण को देखो, उनके सौंदर्य को निहारो, उनके सौंदर्य आदि के बारे में सुनो पढ़ो, धीरे धीरे आकर्षण हमारा बढ़ेगा। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के प्रति बहुत आकृष्ट थे। एक भी दिन जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बिताया कि जिस दिन वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नहीं गए। चैतन्य महाप्रभु भगवान को देखते थे, उसको उन्होंने नाम दिया था एक प्रकार से नेत्रोत्सव। कृष्ण को देखना आंखों के लिए उत्सव है। जब भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा के बाद 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, 16वें दिन रथ यात्रा के एक दिन पहले जब दर्शन देते हैं, उस दर्शन को कहा जाता है नेत्रोत्सव हो रहा है। तो सारे लोग जो रथ यात्रा के लिए आते हैं जगन्नाथपुरी में, रथ यात्रा के एक दिन पहले आते हैं और भागते हैं पागल की तरह भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए। आंखों का उत्सव 15 दिन बीतते हैं। महाप्रभु जब ये स्नान यात्रा आती थी जगन्नाथपुरी में और 15 दिन के लिए जगन्नाथ मंदिर के डोर बंद हो जाते हैं, भगवान के दर्शन नहीं होते, चैतन्य महाप्रभु रोया करते थे। रोते रोते अलारनाथ, वहां से 13 या 15 किलोमीटर या 30 किलोमीटर है, इतना दूर दौड़ते दौड़ते जाते थे। क्यों? जगन्नाथपुरी उनको शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, जगन्नाथपुरी शून्यवत महसूस होते थे। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी का उनको दर्शन प्राप्त नहीं होता था। इसलिए वही चैतन्य महाप्रभु उसी दिन अलारनाथ, जो जगन्नाथपुरी से नजदीक है, वहां जाते हैं। वहां वो विग्रह है जो गोपियों ने भगवान को ढूंढते ढूंढते चतुर्भुज रूप का दर्शन किया था, जो भी हमने चर्चा की थी अलारनाथ में, वो है जिनका जाकर गोपियां या चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हैं। और फिर जिस दिन जगन्नाथ मंदिर के पट खुलते हैं, उस दिन महाप्रभु आते हैं। कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को सुबह से लेकर जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। आल्टर में पूरा अंदर जगन्नाथपुरी में आप जाते हैं, उस दिन महाप्रभु हमेशा तो गरुड़ के पास से दर्शन करते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद जब दर्शन करने जाते हैं, इतना अधिक उनको विरह महसूस होता है कि पूरे आल्टर के पास जाकर सुबह खड़े हो जाते हैं, शाम तक बाहर नहीं निकलते, केवल जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण है, श्याम सुंदर कृष्ण, उनको देखते रहते हैं। उनके सौंदर्य का पान करते हैं। देखने का मतलब है आंखों के द्वारा भगवान के सौंदर्य को पीना, ये तो शुद्ध भक्त करता कर सकता है, हमारे लिए तो टफ है। हम तो जीवा से कृष्ण प्रसाद को पी सकते हैं, पान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का प्रगाढ़ आकर्षण भगवान कृष्ण के लिए था और उन्होंने हमें शिक्षा दी है भगवान के प्रति ये जो आकर्षण है वो हम विकसित कर सकते हैं उनके नाम को ग्रहण करके, उनके गुणों की चर्चा करके और उनके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करके। धीरे धीरे हमारा जो आकर्षण है उनके सौंदर्य के लिए हो सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे।